मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज के मुख्य विषय में मैं सेना में महिलाएं, इस पर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले आइए कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। आपने रेडियो न्यूज़ में सुना होगा कि ये परसों की न्यूज़ की मैं आपको बात बता रहा हूं कि कैबिनेट ने फैसला लिया है, यानी कि केंद्र सरकार ने फैसला लिया है नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, ऑयल पाम योजना के बारे में। अब आप देखिए क्या है नेशनल मिशन, ये राष्ट्रीय अभियान है। किसका राष्ट्रीय अभियान है? एडिबल ऑयल्स यानी कि जो खाद्य तेल होते हैं उनके बारे में यह अभियान है, लेकिन उसका एक्सक्लूसिव इस पर जोर किस पर है? ऑयल पाम, पाम ऑयल पर जोर है। थोड़ी सी यह बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि बाय द वे मेंस में ज़्यादा संभावना होती है इस तरह के प्रश्नों के पूछे जाने की, तो आप इसे मेंशन कर सकें। दरअसल भारत को जो खाद्य तेलों की जो ज़रूरत होती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमें आयात करना पड़ता है, और आप जानते हैं कि जब आयात करना पड़ता है तो उसके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। तो सरकार ने ये फैसला किया है कि हम अपने यहाँ ही जो खाद्य तेल का जो उत्पादन हो रहा है उसके बीज का, उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ, और सन 2025-26 तक जो लक्ष्य रखा गया है, आपके ध्यान में बात होनी चाहिए, वो है कि हमारा जो घरेलू उत्पादन है पाम ऑयल का केवल, वह 3 गुना बढ़ जाए, और 3 गुना जब बढ़ेगा तो वह हो जाएगा 11 लाख टन। इसके लिए सरकार ने जो योजना बनाई है, एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला तो यह है कि जो किसान इसकी खेती करेंगे उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी, और दूसरी जो इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि पाम ऑयल वो तैयार हो गया, उसका उत्पादन हो गया और बाजार में उसकी कीमत कम मिल रही है, तो सरकार उसकी भरपाई करेगी ताकि किसानों को नुकसान ना हो। सीधी सी बात है कि इससे किसान पाम ऑयल के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हो सकेंगे, सामने आ सकेंगे, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए 11,040 करोड़ रुपये, मोटे तौर पर 11,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। डेटा आप चाहे तो याद रख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, जो बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है वो ये है, मद्रास हाई कोर्ट ने सीबीआई में सुधार के लिए सरकार को कुछ निर्देश दिए हैं। आपको ध्यान होगा शायद 2 साल पहले की बात है, अगर आप तब तैयारी कर रहे होंगे तो, उस समय कोर्ट ने कहा था कि ये जो सीबीआई है ये बेसिकली पिंजरे का तोता हो गया है। पिंजरे का तोता का मतलब है कि यह सरकार का गुलाम हो गया, जबकि अपेक्षा की जाती है कि इस तरह की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो स्वतंत्र रूप से काम करेगी। लेकिन आप देखते हैं कि सीबीआई की जो जांच होती है लगातार उस पर ये आरोप लगते रहते हैं कि वो सरकार के दबाव में काम कर रही है, राजनीति से प्रेरित है, इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। तो इसके बारे में अभी मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं, क्योंकि उसका ये मानना है कि जो सीबीआई है वो बकायदे किसी तरह के दबाव के अभाव में काम करे, सरकार के किसी निर्देश का पालन उस तरह से न करे। हाँ, जो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो कानून हैं, उनका पालन करना जरूरी है, लेकिन एक प्रकार से वो एक स्वायत्त निकाय के रूप में, ऑटोनोमी बॉडी के रूप में काम कर सके, जैसे कि सीएजी वगैरह काम करते हैं। जैसे सीएजी अपनी रिपोर्ट देती है वो संसद में रखी जाती है, इसी तरह से सीबीआई भी केवल संसद के लिए अपनी रिपोर्ट दे, सरकार को नहीं। तो इसके लिए इन्होंने जो कुछ व्यवस्था करने की बात कही है, 2-3 बातें कही गई हैं, उन्हें आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लें, क्योंकि सीबीआई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है। दोस्तों, कहा गया है, केंद्र सरकार से कहा है कि वो सीबीआई के जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी जोन हैं, उन जोन में फॉरेंसिक विज्ञान की प्रयोगशाला बनाए, और जहाँ इस तरह की प्रयोगशालाएँ ऑलरेडी हैं उन्हें उन्नत करे, ताकि जो जाँच होती है और जाँच में जो रिपोर्ट मांगी जाती है वो रिपोर्ट जल्दी मिल सके। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हाई कोर्ट ने कही है वो ये है कि इसको आप स्वायत्त बनाइए, जैसे कि चुनाव आयोग स्वायत्त है, उसमें जो ह्यूमन रिसोर्सेस की कमी है उस ह्यूमन रिसोर्सेस की कमी का एक आप डिटेल प्रपोजल बनाएं, और उन्हें हर हालत में जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश करें, और केंद्र सरकार 3 महीने के अंदर ये सारे फैसले करे और सारे रिपोर्ट दे। अब स्वायत्तता देने की जहां तक बात है, अब देखते हैं कि इसके बारे में केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है। दूसरी जो प्रशासनिक कमियां हैं वो तो दूर की जा सकती हैं। देखिए, एक जो ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कही गई है सीबीआई में, होता यह है कि वहां डायरेक्ट इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट नहीं होती। वहां जो ज़्यादातर ऑफिसर्स आते हैं वो डेपुटेशन पर आते हैं, जिसे आप हिंदी में प्रतिनियुक्ति करते कहते हैं, और उसके जो टॉप लेवल पर हैं या जो मिडिल लेवल पर हैं वो ज़्यादातर आईपीएस ऑफिसर्स डेपुटेशन पर जाते हैं। तो बहुत लोग अब डेपुटेशन पर नहीं भी जाना चाहते। तो सामान्यतः यह देखा गया है कि अगर उसका पूरा कैडर 8,000 लोगों का है तो लगभग 6,500-7,000 लोग ही वहाँ काम कर रहे होते हैं। अब इस कमी को पूरा करने के लिए अब धीरे धीरे अर्धसैनिक बल जो हमारे हैं, उन अर्धसैनिक बलों से ऑफिसर्स लिए जाने लगे हैं। अब वो आ तो जाते हैं, लेकिन अर्धसैनिक बल के जो ऑफिसर्स हैं या जो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर हैं, उनके पास जांच करने का कोई अनुभव नहीं है, वो प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, तो काम को वो उस तरीके से अंजाम नहीं दे पाते, क्योंकि सीबीआई का जो काम है, जो दायित्व है, वो यही है कि वो जांच करे। तो इस तरह से सीबीआई अपने दायित्वों को न केवल, ऐसा नहीं कि ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी के कारण ही नहीं निभा पा रहा है या सरकार के दबाव के कारण नहीं निभा पा रहा है, बल्कि सच ये है कि उसके पास अनुभवी लोगों की भी कमी है। तो इधर भी थोड़ा सा विचार किए जाने की जरूरत है। तो आपके ध्यान में ये बात रहनी चाहिए। दोस्तों, इस बीच में अफगानिस्तान की स्थिति पर तो आपकी नज़र होगी ही। आप देखिए कि जो एक पॉजिटिव जो डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है वो ये है कि दुनिया के देश अफगानिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। अगर कुछ देशों को हम छोड़ दें, जिसमें रूस, चीन, पाकिस्तान जैसे देश हैं, ये तो ज़्यादातर देश अभी अफगानिस्तान का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस दबाव में जो सबसे बड़ी जो बात अभी सामने आई है, मैंने माइलस्टोन की तरफ मैं आपका ध्यान दिला रहा हूँ, वह है कि अफगानिस्तान को जो आर्थिक सहायता मिल रही थी फॉरेन कंट्रीज से, उसे रोक दिया जाए। और अगर ये हो गया तो मान करके चलिए कि अफगानिस्तान की कमर टूट जाएगी, क्योंकि उसके पास अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज इतने नहीं है कि वो सर्वाइव कर पाएगा। हाँ, ये जरूर है कि जो तालिबान है, तालिबानियों की जो फंडिंग होती है, जो कमाई होती है, वो सबसे ज़्यादा अफीम की खेती से होती है। अफगानिस्तान में सबसे उम्दा किस्म की अफीम होती है। इस अफीम को ही प्रोसेस्ड करके हेरोइन बनाया जाता है। सोच करके देखिए कि एक डेटा आया है कि 2001 में अफगानिस्तान में अफीम का उत्पादन 180 टन होता था, जो 2007 में बढ़कर 8,000 टन हो गया, और इसकी खूब तस्करी की जाती है और इससे तालिबानियों को खूब आमदनी भी होती है। अब ये बात अलग है कि जब फॉरेन एड रुक जाएंगे तो अब वो पता नहीं किस तरीके से व्यवस्था करेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरह की जो तस्करी है ये और भी बढ़ जाएगी, लेकिन फिलहाल अमेरिका ने सारे फंड सीज कर दिए हैं। अमेरिका जो भी मदद देता था उसने पूरे फंड सीज कर दिए हैं, और इसी तरह से जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन, उसने भी बाकायदे अपने सारे फंड सीज कर दिए हैं, जो भी रिजर्व फंड थे, आपातकालीन रिजर्व फंड। तो लोगों को थोड़ी सी उम्मीद हो रही है कि शायद तालिबान नर्म पड़े, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, जो मुख्य विषय है वह है सेना में महिलाएं, और खासकर यह विषय पहले से ही चलता चला आ रहा है, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट को कह लीजिए एक नए फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, और आप ऑलरेडी अखबारों में पढ़ भी चुके होंगे। आपको मालूम है कि जो सेना में भर्ती होती है वो 3 एजेंसियों के थ्रू होती है, या कह लीजिए कि उसकी भर्ती करने के 3 रास्ते हैं। एक तो है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, दूसरा है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, IMA कहते हैं, और तीसरा है स्टाफिंग ट्रेनिंग एकेडमी, और तीसरा है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। ये 3 सोर्सेज हैं। तो NDA के जरिए जो अभी तक भर्ती हो रही थी उसमें महिलाओं की भर्ती नहीं होती थी, और NDA की जो विशेषता है वो ये है कि 12th के बाद ही आप इसके लिए बैठ सकते हैं। यानी NDA वगैरह के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ते भी रहते होंगे या बहुत स्टूडेंट इसकी तैयारी करते हैं, 4-5 लाख स्टूडेंट बैठते हैं। इसमें महिलाओं को बैठने की अभी तक अनुमति नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से भेदभाव वाली नीति है, क्योंकि सरकार ने यही कहा था, सरकार के जो वकील थे उनका यही कहना था कि ये सरकार का नीतिगत निर्णय है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इस तरह से भेदभावपूर्ण नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते, जबकि इससे पहले भी महिलाओं को सेना में प्रवेश मिल चुका था। इसको लेकर के एडिटोरियल कमेंट्स कुछ आए हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसे इनका इंडक्शन है 1992 से शुरू हो गया था कि महिलाएं सेना में आएंगी, और इसके बाद अगर आपको ध्यान होगा पिछले साल फरवरी में बकायदे कोर्ट ने ही कहा था कि महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिया जाना चाहिए, और बकायदे इनकी नियुक्ति भी ऐसी जगह पर होना चाहिए जो कमांडिंग पोजीशन वाली होती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कहीं युद्ध चल रहा हो तो आप वहाँ इनको नियुक्त मत कीजिए, यानी कि नियुक्ति में भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। और इसको लेकर के उस समय बहुत लोगों ने वेलकम किया था, बहुत ज़्यादा स्वागत किया था, और सच पूछे तो अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है इसका भी लोग स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ कि जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो कोई भी घटना घटित हो रही है या एज ए होल दिस ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ासकर मेंस की दृष्टि से। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, आपको हर साल कम से कम 2 क्वेश्चंस वीमेन एम्पावरमेंट पर मिल जाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि जब हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उसकी बहुत सी ब्रांचेज हो जाती हैं, है ना, गांव की महिलाएं हैं और इस तरह से युवा लड़कियां हैं और माता के रूप में महिलाएं हैं, कार्य करने वाली महिलाएं हैं, इस तरह से फिर बहुत सारी उनकी ब्रांचेज बनती हैं। तो आपको इस पर बहुत अच्छी निगाह रखनी होगी कि सरकार वीमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रहा है। परसों ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि शायद दिल्ली सरकार ने बकायदे वहाँ जो इलेक्ट्रिक जो ऑटो चलने शुरू हुए हैं उसमें से 30% जो लाइसेंस हैं वो वीमेन के लिए रखे हैं, कि मतलब लाइसेंस जो दिया जाएगा 30% वीमेन को दिया जाएगा। आप देखते हैं कि पंचायती चुनाव वगैरह में भी बकायदे 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है। हाँ, ये जरूर है कि संसद में अभी यह रिजर्वेशन नहीं हुआ है जिसको लेकर के लगातार मांग की जा रही है, लेकिन लगातार आप जो दिशा देख रहे हैं वीमेन एम्पावरमेंट की वह साफ है कि आने वाला जो वक्त है वह अब बहुत ज़्यादा अपने दरवाजों को महिलाओं के लिए बंद नहीं रख सकेगा, और महिलाएं बकायदे जहाँ नई जगहों पर जा रही हैं, नए नए दायित्व पा रही हैं, वहाँ अपनी सार्थकता भी सिद्ध कर रही है, वहां सफल होकर के दिखा भी रही है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर आपको बकायदे नजर रखनी चाहिए। मुख्य विषय के बारे में फ्रेंड्स बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ के नाम हैं नेहा गुप्ता, निंदन झा, निधि मीना और योगेश दिपाकर। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, अभिवादन भी, नमस्कार।